सलाम वालेकुम भाईजान।
वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो मिर्ज़ा की मदद के लिए कारखाने में रुकना था ना। जवाद के कारीगर आ गए?
अभी तक तो नहीं। मोहम्मद बाकर भाई, काजिम और अब्बास का भी कोई अता पता नहीं है।
ठीक है, कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, मैं कारखाने होकर आता हूँ। अपना मोबाइल ऑन रखना और ज़्यादा बातें भी मत करना उस पर। यहाँ से हिलोगे नहीं क्योंकि हो सकता है उन्हें कोई काम हो।
मैं यहीं पर हूँ भाईजान, आप जाइए, परेशान ना हो। और हाँ भाईजान, मीरास के कागजात भी तैयार हो गए।
खुदा तुम्हें सलामत रखे।
अस्सलाम
वालेकुम
वालेकुम।
सलाम। स्कूल नहीं गई?
हाँ गन्ने ही गई थी, छुट्टी लेकर आ गई हूँ। तबीयत कैसी है?
वैसी ही है, कोई फर्क नहीं हुआ है। तुम अगर थकी हुई हो तो रास्ते में घर छोड़ दूँ?
नहीं, मैं यहीं पे रुकूंगी, बेहतर है। घर पे नहीं रुक पाऊंगी, दिल इधर ही लगा रहेगा।
ठीक है, मुझे भी ज्यादा सुकून रहेगा। मोहम्मद अमीर,
वालेकुम सलाम।
तुम मेरे साथ चलो, नरगिस यहाँ रुक जाएंगी। आओ कारखाने चलते हैं, जरूरत पड़ेगी। आओ,
खुदा
खुदा
हाफिज।
हाफिज।
अम्मी की बीमारी का इल्ज़ाम ही मुझ पर डाल दिया है।
तुम्हारे सर, तुमने क्या किया आखिर?
खुदा जाने।
ज़रूर कुछ ना कुछ किया, जब ही कहना है।
नहीं बाबा, मैंने क्या किया है, फजूल की बातें कर रहे हैं।
तो फिर ये उनकी साजिश है, सारा इल्ज़ाम तुम पे डाल देना चाहते हैं ताकि तुम जिद छोड़ दो। कैसे कैसे लोग हैं, अपनी माँ की बीमारी का भी गलत फ़ायदा उठाते हैं।
किसे कह रहे हो?
किसे कह रहा हूँ? तुम्हारे भाई कह रहा हूँ, जो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता।
मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो रहा जलाल, इन सारी बातों और कशमकश के बीच में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई है।
क्या तुम्हें यकीन है कि वो इस साजिश में शरीक नहीं है?
क्या मतलब?
यानी बीमारी का बहाना है ताकि तुम सब भूल जाओ।
अरे तुम कैसे इंसान हो, मैं कह रहा हूं कि इस वक्त तो अस्पताल में पड़ी हुई है।
अच्छा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो?
मुझे क्या पता, इंतजार करूंगा, देखो क्या होता है।
आखिर क्या होगा, या इधर होगा या उधर होगा। देखो मेरे भाई, मैंने अब तक तुम्हारा बहुत इंतजार कर लिया है। इस कारखाने के हजारों खरीदार हैं, मुझे भी पैसों की जरूरत है शदीद। अगर लेना है तो ले लो, और नहीं लेना है तो तुम अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता लेता हूँ। तुम जाओ, अपनी माँ के इलाज के बारे में सोचो।
अबे ओ, कुछ पता है क्या कह रहे हो? जब मैं सबके सामने बुरा बन चुका हूँ और सबकी नजरों में आ गया हूँ, तो अब तुम भी मुझे आके दिखाने लगे हो? तुम्हें इंसानियत बिल्कुल नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि मेरी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ी है, और तुम कह रहे हो जाकर जायदाद के लिए मैं लड़ूं?
मेरा कॉलर छोड़ो, मेरे नुकसान का जिम्मेदार कौन है? जितने दिनों कारखाना बंद रहेगा उसका नुकसान मुझे भरना पड़ेगा। चलो ठीक है, नुकसान जहन्नम में जाए, मैं एक हफ्ते और इंतजार कर लूंगा। अगर तुम कुछ कर सके तो कर सके, नहीं कर सके तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं।
अशरफ सादात, अशरफ कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो?
बीबी, मेरी बीबी कैसी है?
कैसी ही है, क्यों रो रही हो तुम? इधर आओ।
नरगिस, मुझे सिवा बीबी को देखना।
नहीं देंगे, नहीं हो सकता है। इधर आओ जरा तुम, इधर आओ, बुरी बात है। अरे हुआ क्या है तुम्हें?
मुझे बीबी से मिलना है।
इधर आओ, इधर आओ, आओ तो देखूं क्या हुआ है। आओ अशरफ सादात, अशरफ सादात, कुछ भी तो नहीं हुआ है मेरी जान, आखिर तुम क्यों इतना रो रही हो?
तुम अपनी बच्ची को एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर मत रखना, इस इंसान को तुम्हारी कमजोरी का अंदाजा हो गया है।
छोड़ो, कोई खास बात तो हुई नहीं है बिला वजह, बात क्यों बढ़ा रही हो आजम?
अच्छा, अगर वो हादसा तुम्हारे साथ भी हुआ होता तो फिर भी तुम यही बात कहती?
अरे मोहम्मद हसन भाई कहाँ और काजिम कहाँ? जीनत, इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर मोहम्मद बाकिर भाई को कहो तो कोई बात भी है।
तुम्हारे मोहम्मद बाकिर भाई भी बुरे आदमी नहीं है, ये देखो कि कौन इन्हें चढ़ा रहा है।
खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, उनकी जान से दूर। अगर अम्मी यहाँ से सलामत वापस ना आई तो पता नहीं उस वक्त हम क्या करेंगे।
वाह, दिल खुश कर दिया तुमने, शैतान के भी कान काट लिए हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर शैतान घुस जाता है और शैतानी बर्पा करता है, लेकिन तुम तो जाके शैतान के अंदर बैठ गए और शैतानी बर्पा कर रहे हो।
मैं जो कुछ भी हूँ वो आप सबकी ही देन है, आप उस्ताद जो ठहरे हमारे।
इसीलिए कहते हैं कि एक शागिर्द हमेशा शागिर्द नहीं रहता, एक दिन उस्ताद के भी कान काट लेता है। नहीं वाकई मजा आ गया, मैं तो तुम्हारी शागिर्दी के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बीवी क्या हाल है?
उसकी कुंजी हाथ में आ गई बिलाखिर, समझा रहा हूँ।
उनकी माँ का क्या हाल है?
वो तो एक चूंटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो तो जानवरों से भी मोहब्बत करती हैं।
हमेशा यही होता है, एक आदमी गलती करता है दूसरा उसका खमियाजा भुगतता है, एक पागलपन करता है नुकसान दूसरा उठाता है।
लेकिन मोहम्मद बाकर ने बहुत ज्यादा जुनून दिखाया, अगर उसे पता होता।
मोहम्मद बाकर को नहीं कह रहा हूँ घमड़, मैं उसके भाई की बात कर रहा हूँ। जब हर चीज अपने कब्जे में ले रहा था तो इस दिन के बारे में उसे सोचना चाहिए था। उसने उनका हक मार लिया और इस बीच में मारी गई माँ। अच्छा मोहम्मद बाकर और अब्बास क्या खबर है?
नहीं मालूम, मुझे लग रहा है वो ढीले पड़ गए अम्मी की वजह से।
फिर तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जल्दी से उनके पास जाओ वरना मामला बिगड़ जाएगा।
जिंदा सलामत रहो मिर्जा।
बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे काम की अहमियत को कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस ये कुछ दिनों के लिए है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि कारखाना चलता रहे, ताकि वो ये ना समझे कि मैं उनके बगैर कुछ नहीं कर सकता।
वो लोग कौन हैं?
मोहम्मद बाकर और काजिम।
अब्बास भी एक कदम बढ़ाता है लेकिन दो कदम पीछे हट जाता है।
तो अपना एक ग्रुप बना रखा उन्होंने,
लश्कर कहो, अशकिया का लश्कर।
बहुत बेवकूफ है, समझ रहे हैं कि जलाल उनके लिए पैसा खर्च करेगा, उसके लिए उन लोगों की हैसियत कूड़े भर है बस। काजिम और अब्बास समझ में आते हैं, लेकिन मोहम्मद बाकर को क्या हो गया है?
मोहम्मद बाकर का मामला आज और कल का नहीं है, बहुत पुराना है। उसकी हकीकत कभी ना कभी तो सामने आनी ही थी।
मुझे मोहम्मद बाकर से कोई तश्वीश नहीं है, कभी न कभी तो मुंह की खाएगा और फिर वापस आ जाएगा।
हाँ वो ठीक है, लेकिन इस बीच बहुत सी चीजें पामाल हो जाएंगी। मैं अपने खानदान की हुरमत के बारे में फिक्र।
ये हादसा किसी न किसी दिन तो पेश आना ही।
एक मिनट, ये बताना किस आने के बारे में कह रहे हो? ये कि बड़ों की इज्जत पामाल हो और भाई भाई के सामने आकर खड़ा हो जाए?
बहरहाल जवाद साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं बहुत से लोगों को जानता था जो काम तलाश में थे, और आपके यहाँ कुछ लोगों की जगह खाली थी और पूर हो गई।
इंशाल्लाह तुम्हारा भी काम शुरू हो जाएगा तो मैं इन कारीगरों को तुम्हारे पास फिर से भेज दूंगा।
नहीं भाई, बाजार में अगर गिरे तो गिरे, फिर उठ खड़े होना तकरीबन नामुमकिन है। मोहम्मद अली, बेहतर यही है कि आप भी चौकन्ना रहें, मैं जरा नीचे जाकर कारीगरों से निपटता हूँ।
सलामत रहो भाई।
अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
खुश आमदीद
कहते हैं आपको।
कैसे मिजाज है? और क्या हो रहा है?
इस कागज को आपको स्कैन पहुंचा के फौरन वापस आ जाना है, जरा जल्दी आ जाइएगा।
जी जी,
इंशाल्लाह मुबारक हो आपको, खुदा हाफिज।
ये रजा साहब, ये भी आपका
इनाम, बहुत शुक्रिया आपका,
खुदा हाफिज,
खुदा हाफिज।
जनाब एक गाड़ी आपके लिए चुन कर रखी हुई है, जबरदस्त,
आपकी बड़ी मेहरबानी।
देखिए अगर मैं कहूं कि गाड़ी एक डॉक्टर साहिबा के पास थी और सिर्फ उससे मतलब आ जा करती थी तो झूठ होगा, अगर कहूं कि जरा बराबर खराश तक न लगी है तो ये भी सरासर झूठ बोलूंगा। हकीकत तो यह है कि कई बार इसके टायर बदले जा चुके हैं और बहुत चली हुई गाड़ी भी है, एक बार इंजन भी तामीर हो चुका है, लेकिन गाड़ी है ज़बरदस्त, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। अलबत्ता मैं ये भी सिर्फ आपसे कह रहा हूँ चूँकि आप अपने आदमी हैं, अगर कोई गैर होता तो मैं कहता कि गाड़ी नई से भी बेहतर है। तवज्जो फरमाइए आपने, अब ले जाइए और ऐश कीजिए, मुबारक हो।
जिसकी है उसी को मुबारक हो।
क्यों, किसकी है?
हाँ मेरे लिए भी खरीदार ढूंढो, देखिए खरीदार मिलता भी है या नहीं, या फिर लफाजी
का। हाँ भाई, इसके चार खरीदार इस वक्त भी हैं, ज्यादा पैसे देने तैयार भी हैं।
तो फिर बेच दो।
क्यों?
मुझे पैसों की जरूरत है और शदीद जरूरत।
ये बताओ अपने भाई से बात कर ली है?
भाई को इससे क्या मतलब?
भाई को इससे क्या मतलब, बंदे खुदा एक गाड़ी उन्होंने ही तो आपके लिए खरीदी थी और शायद वो उसको अपने नाम भी कराना चाहते थे।
वो तो जितना कर सकते थे कर चुके हैं।
क्या बात है, आप लोगों में ताल्लुकात कुछ खराब हो गए क्या?
ये बात भी रजिस्ट्री की सनद में लिखोगे?
अच्छा मुझे हकीकत बताने दीजिए, आपके भाई ने कहा था कि कागजात आपके नाम से रजिस्टर हों, लेकिन उसके बदले ना पैसा मिला है ना कोई चीज। अब अगर ये बात है तो फिर आप जाइए और अपने भाई के साथ आइएगा।
देखो उशंग मियां, ये तुम्हारी गाड़ी, मुझे नहीं चाहिए।
देखो अब अगर कहोगे भी तो नहीं दूंगा।
यहाँ क्यों बैठी हो? टेस्ट में क्यों बाहर ही हो?
यानी तुम नहीं जानते काजिम, तुमने ऐसा काम किया है कि मैं ना तो आगे बढ़ सकती हूँ ना पीछे।
देखो अशरफ, या तुम खुदा को मानती हो या नहीं मानती। मतलब ये कि जब खुदा की जरूरत हो तो नमाज पढ़ो, दुआएं मांगो, खुदा को याद करो, और जब जरूरत ना हो तो उसकी मुनकर हो जाओ। ठीक से सुन लो, अगर तुम अपने भाईजान का साथ देना चाहती हो तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं भी खुद को ज्यादा रुसवा न करूं और अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर दुनिया के ऐसी जगह जाऊं जहां तुम मेरा नाम तक भी न सुनो। ठीक है?
तुम ये बात इसलिए कह रहे हो कि तुम जानते हो कि मैं नाजन के बगैर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती।
रहो या ना रहो मुझसे कोई मतलब नहीं। अब मैं थक गया हूं, या मैं और मेरी बच्ची या फिर भाईजान।
खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो मोहम्मद अमीर, तुम्हारी बातों से खौफ लगता है। अम्मी आप ही इसे कुछ समझाइए।
अम्मी के बाद इस जिंदगी की मेरे सामने कोई अहमियत नहीं है।
ऐसी बातें मत करो मोहम्मद अमीर।
इंशाल्लाह उन्हें शफा मिल जाएगी और वो अपने घर वापस आएंगी, तुम्हारी शादी करेंगी, पर देखना कि सात रात और सात दिन ऐसा शोर शराबा मचाएंगी कि दुनिया देखेगी। परेशान ना हो बेटा,
अम्मी और भाईजान के बाद मेरा कोई नहीं होगा, अलबत्ता तुम्हारे अलावा। मैं अपने घर वालों के बारे में कुछ और सोचता था। मोहम्मद हसन भाई कहा करते थे हम एक मुट्ठी की तरह हैं, और यह साबित भी हो चुका था। लेकिन इस वक्त हम पांच अलग अलग उंगलियां हैं, किसी से डराते हैं तो किसी से इशारा करते हैं, मुट्ठी का कहीं कुछ पता ही नहीं है।
खुदा उन्हें शफा दे इंशाल्लाह, मेरे खुदा।
मैंने अपने स्कूल की एक सहेली से बात किया, उसकी अम्मी की भी यही हालत हो गई थी, लेकिन माशाल्लाह अब वो चाको चौबंद जिंदगी गुजार रही हैं।
उनकी माँ को किसी ने यूं तड़पाया नहीं होगा, वैसे ही उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता था। इन लोगों ने तो मेरी माँ को बिल्कुल ही तबाह कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया।
इतने दिन गुजर गए, अभी तक कोई तब्दीली नहीं हुई, उनकी हालत कब तक रहेगी डॉक्टर साहब?
खुदा पर भरोसा कीजिए, मैंने अर्ज किया ना, आपकी वालिदा इस वक्त कोमा में है, अलबत्ता उनका अंदरूनी सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। उनकी तब्दीलियों पर मैं मुसलसल नजर रखे हुआ हूँ, और इस वक्त तक हमने उनकी तबीयत बिल्कुल बिगड़ने नहीं दी है। तवज्जो कर रहे ना मोहम्मद अली साहब, लेकिन जब तक वो होश में नहीं आ जाती उस वक्त तक कोई बुनियादी इलाज शुरू नहीं किया जा सकता।
और ये भी नहीं पता है कि ऐसा कब होगा।
अफसोस के साथ ऐसा ही है। देखिए जनाब, मैं आपको नाउमीद करना चाहता, लेकिन ये बता दूं कि वो किसी भी लम्हे कोमा से निकल सकती है, और ये इम्कान भी है कि ऐसा होने में कई माह लग जाएं। आपको मेरा मशवरा ये होगा कि आप अपनी जिंदगी के कामों मसरूफ हो जाएं।
कौन सी हमारी जिंदगी?
किसे फोन कर रहे हो?
अम्मी को। फोन नहीं उठा रही है। तुमने तो कहा था 2-3 दिन में आ जाएंगी।
मैंने कहा था शायद।
मेरा जहन बस उन्हीं की तरफ लगा हुआ है। उस दिन से ना तो उन्होंने फोन किया ना उनकी आवाज सुनी मैंने। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 2-3 दिन ऐसे छोड़ दें। मैं बहुत ज्यादा उनके लिए परेशान हूँ
मोहम्मद हसन।
शुक्रिया।
वादा करो कि परेशान नहीं होगी तो मैं तुमसे एक बात कहूँ।
उस रात जब मेरे मरहूम भाई तुम्हारी अम्मी यानी बीबी का रिश्ता लेने गए तो वो कमसिन थी आफाक। मेरे भाई की उम्र भी अलबत्ता ज्यादा नहीं थी लेकिन लंबे चौड़े हुआ करते थे। यादिश बखैर हम भी अपनी माँ को बीबी कहकर पुकारते थे।
खुदा उनको गरीब रहमत करे।
हम लोग इतना बीबी बीबी कहकर पुकारते थे कि उनका असल नाम ही भूल गए थे। मुझे याद है कि जब उनका नाम कब्र के पत्थर पर लिखा देखा तो धचका सा लगा। हाँ नरगिस। मेरा मतलब यह है कि मोहम्मद अली बेटे मेरे मरहूम वालिद ने वही अपने भाई बहनों के लिए किया जो तुमने किया यानी एक दूसरे के हालात से बेखबर ना रहें।
आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं?
मैं समझ गया तुम नहीं समझे।
चाचा जान जब बर्फ पहाड़ों से नीचे गिरती है तो एक छोटा सा गोला नजर आती है लेकिन वो गोला नीचे लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जाता है और तबाहकुन बन जाता है।
हाँ और ये तुम्हारी आज की हिकायत है।
क्या किया जाए?
तो फिर तुम्हारी सालत का क्या बनेगा? तुम लोग कोई बेहसबो नसब खानदान के तो नहीं हो कि एक ही झटके में खत्म हो जाओ? अपने भाइयों को अलग अलग बुलाओ और उनके अंदर झांक कर देखो उन्हें कोई मुश्किल है या कोई उकसा रहा है। तुम जो ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो अगर उनमें से कोई किसी लावे को पका रहा है तो फट गया तो फिर पता है कि कैसी बलाएं नाजिल होंगी। ऐसा ना हो कि ये मीरास जो नस्ल ब नस्ल होती हुई तुम तक पहुंची है वो तुम्ही पर खत्म हो जाए।
कैसे दिल आपका माना भाईजान, कैसे दिल आपका माना
भाई। जाओ उन्हें देख लो।
मेरी वजह से? आपने एक बार भी नहीं बताया। अगर खुदा रखास्ता अम्मी को।
उन्हें कहां कुछ हुआ है? ठीक है वो?
नहीं वो ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि आईसीयू का मतलब क्या है।
तुम डॉक्टर कब से बन गए? जिंदगी का अरसा बताने लगे? ये दावा तो डॉक्टर भी नहीं करते।
चचा जान अम्मी के हक में बुरा हुआ, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए।
तो बेटे किसी ने उन्हें बेइज्जत भी तो नहीं किया?
किया है, हम सब ने किया है। हम सब ने आंखें बंद कर ली और मुंह खोल दिया और जो भी दिल में था सब जबान पे ले आए। क्या नहीं काम ने
भाई। जाओ उन्हें देख लो। अलबत्ता अभी वो बेहोश है लेकिन इस अंदाज में अगर उन्हें देखोगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा। जाओ मेरे भाई जाओ देख लो।
नहीं मैं नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख सकता।
खुदा के वास्ते चाचा जान कुछ कीजिए कि वो वहां ना जाए। कुछ ऐसा कीजिए कि घर वापस आ जाए।
परेशान ना हो बेटा, यही हमारे साथ रुके तो ज्यादा बेहतर है।
की मोहब्बत मुझे असीर कर रखा है। मैं किसी तरह इसकी मोहब्बत से नहीं निकाल सकती। अगर मैं ऐसा कर सकती तो कबल इसके के तुम कहते और मुझे डराते धमकाते मैं खुद सैकड़ों बार तुमसे तलाक ले चुकी होती। ठीक है मैं नाज़रीन के लिए ये काम करने को तैयार हूं लेकिन इसकी एक सिर्फ शर्त है काजिम, ना मैं और ना तुम हम एक पैसा भी इस मीरास में से नहीं लेंगे।
क्या मतलब?
मतलब ये कि इन पैसों को सिर्फ नाज़रीन के नाम करेंगे।
ठीक है, मैं तो पहले ही से ये बात कह रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं था कि मेरे बीवी बच्चे के हक को मोहम्मद अली हजारों बहाने से हड़पे।
भाई जान के सिलसिले में जरा बराबर मेरा ख्याल नहीं बदला है। अगर वो मेरी जान भी मांगे तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन तुम्हें हक नहीं कि उनके पीठ पीछे कोई बात करो।
अब मैं क्या करूं?
कुछ नहीं, बस अदालत चलकर कुछ कागजात पर दस्तखत करने हैं। गर्मी तो है नहीं, फिर शशोपंज में क्यों पड़ी? फिर अपने भाइयों के चेहरे सामने आ गए?
जानते हो काजिम साहब, दरअसल मैंने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया था, इसलिए मुझे खौफ लग रहा है।
किसका खौफ?
काजिम, अगर मैंने इस पर दस्तखत किए तो कहीं मेरे खानदान पर कोई बला तो नहीं आएगी?
बला? कैसी बला? बला तो हमारे सरों पर आई है अशरफ, तुम्हारा खानदान मैं हूँ, कोई और नहीं। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। अगर तुम अपने कानूनी हक से हाथ धोना चाहती हो और अपने भाइयों के हवाले करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। एक बात ज़रूर याद रखना, बाद में यही बच्ची तुम्हें नहीं बख्शेगी, बिलाखिर ये नाजनीन का हक है। अशरफ, ये लुकमा जो भाईजान निगल रहे हैं वो दरअसल तुम्हारा हक है, मैं बस उनके हल्क से खींचना चाहता हूँ।
खुदा ही जाने।
ठीक है, वापस चलते हैं, छोड़ो माल दुनिया की ऐसी की तैसी, भाईजान की जिंदगी अच्छी गुजरे, हम भी कोई बखील थोड़ी हैं।
कासिम साहब, नहीं, आए चलें, चलें जाकर दस्तखत करें कि किस्सा खत्म हो जाए।
अशरफ, मैं भी इंसान हूँ, जानता हूँ तुम्हारे लिए दुश्वार है लेकिन मजबूरी है, चलो चलो ना।
हाथ नहीं लगाओ, गर्म है भाई, प्याज जल ना जाए, देर हो रही है, जरा जल्दी करो।
मोहम्मद हसन साहब की तबीयत बेहतर है ना इंशाल्लाह?
मैं क्या बताऊं जीनत, अपने ख्यालों में गुम है, यूं लगता है कि उनकी कोई चीज गुम हो गई हो।
इन दिनों सभी बुरे हाल में हैं।
तुम्हारे भाईजान की हालत सबसे ज्यादा
वो तो बकौल अम्मी के चक्की के फत्तर मानंद हो गए हैं। हम सभी अपनी मुसीबतें उनके सर पर डाल देते हैं।
मोहम्मद अमीर के बारे में भी कुछ सोचिए, इस मामले ने सबसे ज्यादा उसे परेशान कर रखा है।
फिर तुम किस काम की हो?
मैं क्या करूँ, उसका जहन बटाओ, उससे बातें करो ताकि उसे ज्यादा सोचने का मौका ना मिले।
उसे जो भी बात करो वो मानी जान की तरफ ही लौटा देता है। अशरफ सादात, खाना तैयार है, किशमिश को जरा तल दो तो मैं खाना निकाल लूं।
किशमिश मैं देख लूंगी, ठीक है।
अरे नरगिस तुम क्यों, मैं चाहती हूँ ये लड़की भी थोड़ी जिम्मेदारी ले।
तुम किशमिश मुझे
जी।
तुम क्यों हवनक बनी बैठी हो एक कोने में?
यानी तुम्हें कुछ नहीं मालूम?
हम सब अम्मी के लिए परेशान हैं, कौन नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है, मैं अपनी बहन को जानती हूँ, तुम्हारे दिल में कुछ और भी अटका हुआ है।
नहीं कुछ नहीं, और क्या, बीबी की बीमारी कोई छोटी बात है नाजनीन?
अरे अगर कोई इस वक्त खबर ले आए कि बीबी ठीक हो गई है तो मैं ये चूड़ियां उसे इनाम में दे दूंगी।
माफ कीजिए, माफ कीजिए, एक मिनट प्लीज चुप रहिए, एक मिनट। ये स्पेशल वार्ड है, आईसीयू में मुलाकात के लिए जाने का तरीका होता है, एक एक करके अंदर तशरीफ लाइए। शुक्रिया।
बेहतर बेहतर। आजम पहले तुम जाओ।
पहले अशरफ सादात को जाने दीजिए, ये ज्यादा बेहाल हुई जा रही है। बाजी तुम जाओ।
मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं देख पाऊंगी, तुम लोग जाओ।
ये क्या बात कर रही हो, बच्ची को मेरे हवाले करो और तुम जाओ ना।
नहीं नहीं जाऊंगी।
आओ बेटी आ जाओ।
काजिम के पास बच्चे को मत जाने देना।
नहीं तुम परेशान ना हो।
यहाँ जी वो मस्सी है, बच्चे को बाहर ले जा रहा हूं।
आप जाइए।
नहीं तुम जाओ, जाओ।
अशरफ सादात, इस तरह के खेल खेलोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं, बता देता हूँ।
मैंने क्या किया है कासिम?
बस
मोहम्मद अमीर तुम जाओ।
शायद वो समझ गई हैं कि उनके साथ क्या हुआ है।
समझ गई हैं?
हाँ, वो रोई थी, तकिया गीला था। इंशाल्लाह।
इसका मतलब जानते हो, हमको इस बात पर खुश होना चाहिए कि हमारी माँ हॉस्पिटल में बिस्तर पर है और रो रही है।
मोहम्मद, बीबी जान रोई थी। हाँ, मुझसे उन्होंने बात की।
बात की?
पूछ रही थी कि मेरे बच्चे कहाँ हैं।
आजम, जल्दी आ जाना बाहर।
آخر تو هستی، به محتاج تو محتاجی حرومه. Again.